अरुणिमा परेशान होते हुए नीचे हॉल में आते हुए अपनी माँ को तलाश कर रही थी कि तभी उसकी माँ उसे मंदिर के पास खड़ी मिलती है, जो भगवान की मूर्ति के सामने हाथ जोड़े हुए प्रार्थना कर रही थी। शारदा जी अपने हाथों को जोड़े हुए भगवान से कह रही थी, बस भगवान जी, जैसे आपने यहाँ तक मेरा साथ दिया है, आगे यूं ही अपना हाथ हमारे सिर पर बनाए रखिएगा। मेरी अरुणिमा के लिए इतना अच्छा रिश्ता आया है, मेरी आरू इस राज्य की रानी बनेगी। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि राजा साहब जैसे इंसान ने खुद मेरी ओर से शादी करने की इच्छा जाहिर की है। मुझे तो आज भी ये सपने जैसा ही लग रहा है, और कभी कभी सोचकर डर लगता है कि अगर राजा साहब ने इस मुश्किल परिस्थिति में हमारा साथ ना दिया होता तो आज हम सब सड़क पर होते। उन्होंने न सिर्फ हमारी छोटी सी प्रिंटिंग प्रेस को बचाया है, बल्कि वहाँ पर काम कर रहे लाखों दुकानदारों को बेरोजगार होने से बचाया है। अरुणिमा अपनी माँ की बातें सुन लेती है। इस वक्त उसके चेहरे मिले जुले भाव थे। अरुणिमा को पता था उसकी माँ के लिए उसकी प्रिंटिंग प्रेस क्या मायने रखती है, उन्होंने किस मुश्किल परिस्थिति में वो छोटी सी प्रेस खोली थी और कितनी मुश्किलों से उसे चला रही थी। अरुणिमा धीरे धीरे अपने कदम पीछे लेने लगती है और अपने कमरे की तरफ चली जाती है। अपने कमरे में पहुंचकर अरुणिमा दरवाज़ा बंद कर लेती है और तकिया में मुंह छुपाकर रोने लगती है। वो जानती थी कि इसका मतलब यही है कि अब उसके पास इस शादी के अलावा और कोई चारा नहीं था। वो अपने परिवार को बर्बाद नहीं होने दे सकती थी और अपनी माँ को इस तरीके से सड़क पर नहीं आने दे सकती थी। इस मुश्किल परिस्थिति में अरुणिमा को अपने पिता की याद आती है। वो रोते हुए उठकर बैठ जाती है और ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए बोली, पापा, अगर इस वक्त आप हमारे साथ होते तो हमें इन सब मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ता। न जाने रात के किस पहर अरुणिमा रोते रोते यूं ही सो गई थी। उसका पूरा चेहरा मुरझा गया था और चेहरे पर आंसुओं के निशान बन गए थे। अरुणिमा तो फिर भी सो रही थी, लेकिन वहां महल में आस्तिक की नींद उड़ी हुई थी। वो अपनी माँ के कमरे में था। आस्तिक इस वक्त अपनी माँ की तस्वीर के सामने खड़ा था, जिसमें वो लाल बनारसी साड़ी में और राजसी गहनों में खड़ी मुस्कुरा रही थी। आस्तिक अपनी माँ की तस्वीर को देखाए और बोला, मेरी कठपुतली तैयार है माँ, मेरे इशारों पर नाचने के लिए। आप फिक्र मत कीजिए, मैं उसे दर्द देने में ज़रा भी कमी नहीं छोड़ूंगा। आस्तिक धीरे धीरे अपनी माँ की तस्वीर के पास आने लगता है। उसकी माँ लाल बनारसी साड़ी में कितनी खूबसूरत लग रही थी। उसी पल उसके दिमाग में अचानक से अरुणिमा की छवि आ जाती है, जब वो नीले रंग की साड़ी में उसके सामने आई थी। वो धीरे से हाथ बढ़ाकर अपनी माँ की साड़ी पर हाथ रखते हुए कहता है, आपको पता है माँ, वो भी साड़ी में बहुत खूबसूरत लगती है। ये कहते वक्त आस्तिक का चेहरा नर्म और शांत था, लेकिन तभी उसका चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए और सख्त और कठोर हो गया। आस्तिक ने जो हाथ अपनी माँ की तस्वीर के ऊपर रखा था, अचानक से वो उसी हाथ से अपने गाल पर एक जोरदार तमाचा मारता है। आस्तिक गुस्से में खुद से बोला, ये क्या कर रहा है आस्तिक, तो कैसे उस लड़की के बारे में ऐसी बातें कर सकता है? वो खूबसूरत नहीं हो सकती है, मैं उसकी तुलना अपनी माँ के साथ कैसे कर सकता हूँ? वो उस कमीनी की बेटी है, उसकी बेटी भी उसी की तरह होगी। फिर आस्तिक अपनी माँ की तस्वीर को देखने लगा और पागलों की तरह उससे बोला, सॉरी माँ, पर मैं क्या करता, उस औरत ने अपनी बेटी को इतना खूबसूरत बनाया हुआ है कि कोई भी उसके वश में आ जाएगा, लेकिन मैं बिल्कुल उसके काबू में नहीं आऊँगा। तुम बिल्कुल फिक्र मत करना, मैं हमेशा तुम्हारा बेटा बनकर ही रहूँगा, और उस लड़की की तो मैं ऐसी हालत करूँगा, सपने में भी अपने आप को आईने में नहीं देख पाएगी। बस माँ, एक हफ्ता और उसके बाद शुरू होगा मेरा असली खेल। रॉयल मैरिज हॉल। आज इस मैरिज हॉल की खूबसूरती देखते ही बन रही थी। रॉयल सिक्योरिटी ने इस मैरिज हॉल पर ऐसी सिक्योरिटी लगाई हुई थी कि यहाँ पर एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, और हो भी क्यों ना, शादी सिंघल के राजा साहब की जो है। इस खूबसूरत से मैरिज हॉल में सब लोग आज बहुत ज़्यादा बिजी हैं। शारदा जी यहाँ से वहाँ दौड़ते हुए शादी की तैयारी कर रही थी, मिश्री और ज्योति उनकी मदद कर रही थी। तो वही मैरिज हॉल के एक कमरे में अरुणिमा को ब्यूटिशियन तैयार कर रही थी। वो ब्यूटिशियन अरुणिमा के बालों में फूलों का गजरा लगाते हुए कहती है, मैडम, आप तो बहुत सुंदर हैं। सच में मैंने बहुत सारी दुल्हनों को तैयार किया है, लेकिन आप उन सब में सबसे ज्यादा सुंदर हैं। अरुणिमा उस ब्यूटिशियन की बात तो सुन रही थी, लेकिन उसका ध्यान इस वक्त अपने श्रृंगार पर नहीं था, बल्कि दो दिन पहले जो हुआ उस बात पर था। दो दिन पहले आस्तिक और अरुणिमा की सगाई थी। जब आस्तिक ने अरुणिमा का हाथ अंगूठी पहनने के लिए मांगा, तो अरुणिमा ने धीरे से अपना हाथ आस्तिक के हाथों में दे दिया। आस्तिक ने वो अंगूठी इतनी जोर से अरुणिमा की उंगली में पहनाई कि अरुणिमा की उंगली से खून निकल आया। पर किसी को पता ना चले इस वजह से अरुणिमा ने जल्दी से अपना हाथ अपने दुपट्टे में छुपा लिया। उसका हाथ सूज गया था और उंगली में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। किसी ने ये बात पहचानी हो या ना पहचानी हो, पर आस्तिक इस बात को बहुत अच्छे से पहचान गया था और उसके चेहरे पर डेविल स्माइल थी। ब्यूटीशियन ने अरुणिमा को तैयार करके उसके सर पर शादी का दुपट्टा रख दिया। अरुणिमा सच में आज बहुत खूबसूरत लग रही थी। लाल मेहरून रंग के इस लहंगे को प्रणाली ने खुद डिजाइन किया था और ये लहंगा राजा साहब की तरफ से दिया गया था। ब्यूटीशियन वहां से जा चुकी थी और अरुणिमा शीशे के सामने अकेले बैठी हुई थी। आज उसकी शादी है, आज वो उस मॉन्स्टर की हो जाए थी। वैसे तो अरुणिमा बहुत सुंदर लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर दुल्हन वाली चमक नहीं थी। उसकी मन डर से भरा हुआ था। आखिर शादी के बाद वो उस मॉन्स्टर के चंगुल में रहेगी, पर जो भी हो और उसके साथ जो कुछ भी होगा वो उसके परिवार की भलाई के लिए होगा। वो अपने परिवार को हर खतरे से बचाकर रहेगी, भले ही इसके लिए उसे आस्तिक जैसे इंसान से शादी ही क्यों ना करनी पड़ रही हो। अरुणिमा का दिल कह रहा था कुछ बुरा होने वाला है, लेकिन ये बुरा क्या है? वो जो कुछ भी होगा वो सिर्फ अरुणिमा के साथ होगा। वो इस बुरे प्रभाव को अपने परिवार तक नहीं आने देगी। इतना बड़ा मैरिज हॉल है, लेकिन यहाँ पर कोई मेहमान नहीं है, सिर्फ परिवार के लोग मौजूद हैं, क्योंकि ये आस्तिक की पहली शर्त थी कि शादी बहुत ही सीक्रेट तरीके से होगी। ज्योति और मिश्री अरुणिमा के पास आते हैं। अरुणिमा अपने ख्यालों से बाहर आती है। ज्योति कहती है, अरु चलो, पंडित जी तुम्हें बाहर बुला रहे हैं। अरुणिमा के पूरे शरीर में डर की एक लहर दौड़ पड़ती है। उसे बाहर जाना है मंडप में और आस्तिक के साथ शादी की रस्में पूरी करनी है। अरुणिमा के कदम ही नहीं उठ रहे थे। ज्योति और मिश्री ने अरुणिमा को दाएं बाएं से पकड़ा और उसे लेकर धीरे धीरे मंडप की तरफ आने लगे। ज्योति और मिश्री अरुणिमा को लेकर मंडप की तरफ बढ़ रहे थे। अरुणिमा की नजरें झुकी हुई थीं, लेकिन उसे सामने क्या हो रहा है इस बात का आभास हो गया था। मंडप पर दो सिंहासन की तरह कुर्सियां लगी हुई थीं। एक पर आस्तिक बैठा हुआ था, जिसने गोल्डन कलर की शेरवानी पहनी हुई थी, सर पर शाफा और उस पर हीरे का ब्रोच लगा हुआ था। आस्तिक के गले में जो हार था वो असली हीरे के मोतियों का हार था। आस्तिक सच में आज इस दूल्हे के अवतार में बहुत ज्यादा कातिल नजर आ रहा था, लेकिन सबसे ज्यादा कातिलाना तो उसकी निगाहें थीं, जो अरुणिमा को अपनी निगाहों से घूरते हुए ही खून कर रही थीं। रुबाब में राजा वाला एटीट्यूड और चेहरे पर वही घमंडी एहसास। आस्तिक उस सिंहासन पर टेक लगाकर ऐसे बैठा हुआ था जैसे शादी नहीं कर रहा हो, एहसान कर रहा हो।
मंडप से ही थोड़ी दूरी पर कुर्सियां लगी हुई थी। एक कुर्सी पर पृथ्वी बैठा हुआ था। आज उसने भी हल्के पीच कलर की शेरवानी पहनी हुई थी। आखिर उसके भाई की शादी थी। वैसे तो पृथ्वी सबसे ज्यादा खुश होता आस्तिक की शादी पर, लेकिन आज उसके चेहरे पर एक हल्की सी मायूसी नजर आ रही थी। फिर भी वो अपने भाई की खुशी में खुश होने की पूरी कोशिश कर रहा था।